नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का हो जाएगा बंटवारा। और कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के किसानों के कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने के संदर्भ में श्री मोदी ने कहा कि यह सरकार के लिए गौरव की बात है कि उसने इस अवधि में देश के परिश्रमी किसानों की सेवा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने मृदा स्वास्थ्य और सिंचाई जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया, जो बहुत लाभकारी सिद्ध हुआ। देश में सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के सिद्धांतों से प्रेरित होकर एक दशक में उल्लेखनीय परिवर्तन हुआ है। आकाशवाणी समाचार पिछले 11 वर्षों में प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर एक विशेष प्रसारण लेकर आया है। इस श्रृंखला में आज प्रस्तुत है भारतीय किसानों के सशक्तिकरण पर यह विशेष रिपोर्ट।
पिछले 11 वर्षों में देश का कृषि क्षेत्र एक मौन क्रांति का गवाह रहा है। इसके पीछे बीज से बाजार तक के दृष्टिकोण की प्रेरणा रही है। कृषि में सरकार का बजट आवंटन लगभग 5 गुना बढ़ा है। 2013-14 में ये 28,000 करोड़ रुपए था, जो 2024-25 में बढ़कर 1,37,000 करोड़ रुपए का हो गया है। प्रधानमंत्री किसान योजना के अंतर्गत 3,70,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि 11 करोड़ किसानों तक सीधे पहुंचाई गई है। किसानों की वित्तीय सुरक्षा में भी सुधार हुआ। किसान क्रेडिट कार्ड योजना ने 10 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया। वहीं फसल बीमा योजना से लगभग 20 करोड़ किसानों को लाभ हुआ है, जिनके 1,75,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का निपटान किया गया। गेहूं, धान, दलहन और तिलहन जैसी प्रमुख फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी हुई है। सोलर पंपों के लिए पीएम कुसुम और प्राकृतिक खेती मिशन जैसी योजनाओं से कृषि क्षेत्र में मजबूती और स्थिरता को बढ़ावा मिला। पीएम कृषि सिंचाई और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना ने सिंचाई और मृदा उत्पादकता को मजबूत किया है। किसानों को आधुनिक उपकरणों और वैज्ञानिक जानकारी के साथ सशक्त बनाया है। सरकार ने संबद्ध क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित किया है। दूध उत्पादन में 63% से अधिक वृद्धि हुई है। इससे भारत दुनिया का शीर्ष डेयरी उत्पादक बन गया है और दूध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ हुआ है। मछली पालन में भारत का उत्पादन 10 वर्षों में लगभग 2 गुना हो गया है। इससे ग्रामीण आजीविका और तटीय समृद्धि को बढ़ावा मिला। आज भारतीय किसान केवल एक कृषक नहीं है, अब वो राष्ट्रीय विकास में महत्वपूर्ण योगदान भी दे रहा है। दिल्ली से विष्णु की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
विकसित भारत का अमृतकाल, सेवा, सुशासन, गरीब कल्याण के 11 साल।
भारत में बेहद गरीबी की हालत में रहने वालों की संख्या कम करने की दिशा में उल्लेखनीय सफलता मिली है। 2011-12 से 2022-23 के बीच 26 करोड़ 90 लाख लोगों को इससे बाहर निकाला गया। एक रिपोर्ट।
विश्व बैंक के ताजा आंकड़ों के अनुसार गरीबी की यह दर 2011-12 में 27.1% थी। 2022-23 में ये घटकर केवल 5.3% रह गई। देश में 2011-12 में 34 करोड़ 44 लाख से ज्यादा लोग बेहद गरीबी की हालत में थे और 2022-23 में इनकी संख्या तेजी से घटकर 7 करोड़ 52 लाख के करीब रह गई। एनडीए सरकार के 11 वर्ष के कार्यकाल में लागू की गई पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, जनधन योजना और आयुष्मान भारत योजना की मदद से गरीबी की दर घटाने में ये बड़ी सफलता मिली है। इस दिशा में विशेष प्रगति उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में दर्ज की गई। समाचार कक्ष से मनीषा खन्ना।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का बंटवारा हो जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में श्री मांझी ने कहा कि एनडीए में सीटों के बंटवारे को लेकर कोई मतभेद नहीं है।
हम लोगों का सीट पर किसी प्रकार का कोई बात नहीं हुई है और एनडीए में सीटों के लिए बंटवारा के लिए कोई हिच नहीं है। जुलाई के महीना में या उसके पहले बाद में यानी कि अगस्त तक जारी सीटों का हम लोग निपटारा कर लेंगे। अब सबको लड़ने लायक जीतने लायक सीटें मिलेगी। हम लोग समूचे 242 सीट पर हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं क्योंकि लड़ना भी है और लड़ाना भी है। हम लोगों को एनडीए को जिताना है और नरेंद्र मोदी जी को हाथ को मजबूत करना है। डबल इंजन की सरकार बने उसकी चिंता हम लोगों की।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी द्वारा एक दैनिक समाचार पत्र में लिखे लेख के बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला तेज हो गया है। अपने लेख में श्री गांधी ने दावा किया है कि पिछले वर्ष महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में व्यापक धांधली हुई थी। इस पर अपनी प्रतिक्रिया में भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि राहुल गांधी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं रहा है, इसके चलते वे इस तरह के बयान देते रहते हैं।
स्वाभाविक है, जो आदमी हारता है वो इसी तरह की बात करता है। यदि लोकतंत्र में किसी को भरोसा नहीं है तो जनता के बीच में जाए, इस्तीफा दे दे। जितनी उनकी सरकारें हैं वो इस्तीफा करके जाए, चुनाव में कोई दिक्कत नहीं है, चुनाव में हम लोग लड़ेंगे।
इस बीच निर्वाचन आयोग ने श्री गांधी के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। आयोग ने श्री गांधी द्वारा लगाए गए आरोपों पर बिंदुवार जवाब दिया है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। ईद उल अजहा हजरत इब्राहिम द्वारा अल्लाह के आदेश का पालन करते हुए अपने इकलौते बेटे की कुर्बानी देने की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर विभिन्न मस्जिदों और ईदगाहों में विशेष नमाज अदा की गई। राजधानी पटना के गांधी मैदान में नमाज अदा करने के लिए हजारों की संख्या में मुस्लिम धर्मावलंबी पहुंचे थे। इधर बकरीद को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। प्रशासन सोशल मीडिया को लेकर भी सतर्कता बरत रहा है। बकरीद के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्य सरकार ने बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड का पुनर्गठन किया है। जदयू नेता सलीम परवेज को बोर्ड का नया अध्यक्ष बनाया गया है, साथ ही 12 सदस्य भी मनोनीत किए गए हैं। इधर सरकार ने बिहार राज्य खाद्य आयोग का अध्यक्ष प्रहलाद कुमार सरकार को और अशोक कुमार सिंह को बाल श्रमिक आयोग का अध्यक्ष बनाया है। राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष पवन रावत ने आज पटना में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग बनाने की मांग की। प्रदेश में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत कृषि वैज्ञानिकों की टीम गांव-गांव जाकर किसानों के साथ संवाद कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिसर पटना के निदेशक डॉक्टर अनूप दास ने बताया कि संवाद के दौरान किसानों को नई तकनीकों के साथ साथ सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी जा रही है।
किसानों के बीच में जाके हम लोग जो है नया तकनीक के बारे में, सपोज अभी जो है हमारा खरीफ फसल का समय है तो धान का कैसे नया तकनीक, धान की सीधी बुआई, उन्नत प्रजाति, हमारा जो है कैसे अच्छा से न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करे, समेकित कृषि प्रणाली के बारे में बात कर रहे हैं, मक्का के बारे में बात कर रहे हैं, मिलेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, पशु स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, हमारा जो है बागवानी के बारे में बात कर रहे हैं, किसानों का नवाचार वो एक दूसरे से जानकारी ले रहे, दूसरा जगह जाकर उसको शेयर कर रहे और किसानों से फीडबैक ले रहे।
डॉक्टर अनूप दास के साथ पूरी बातचीत आकाशवाणी पटना द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम सामयिक चर्चा में आज रात 7:52 से सुनी जा सकती है। सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नैक द्वारा एक ग्रेड प्राप्त हुआ है। उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने ये जानकारी देते हुए कहा कि यह मान्यता विश्वविद्यालय की उच्च शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और राष्ट्र निर्माण के प्रति प्रतिबद्धता का परिणाम है। 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों के लिए होटल प्रबंधन के क्षेत्र में कैरियर की काफी संभावनाएं हैं। होटल प्रबंधन संस्थान IHM बोधगया के प्रमुख धीमान बनर्जी ने बताया कि आतिथ्य, पर्यटन, स्वास्थ्य और पोषण तथा कैटरिंग जैसे क्षेत्र में कैरियर बनाने के इच्छुक छात्र संस्थान से जुड़ सकते हैं।
10+2 पास बच्चे इसमें एडमिशन ले सकते हैं, उनको ज्वाइंट एंट्रेंस पास करना पड़ता है और ज्वाइंट एंट्रेंस के पश्चात एक काउंसलिंग सेशन होता है। काउंसलिंग सेशन के माध्यम से वो अपना कॉलेज चॉइस करके चूज करके एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चों से निवेदन ये होता है कि आप आएं, हमारे कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, फॉर्म फिलअप करें और एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन होता है, उसमें यू अप्लाई, यू सिट फॉर दैट एग्जाम, बैठिए आप उस एग्जाम को पास कीजिए और तुरंत आपका एडमिशन हो जाता है। 200% प्लेसमेंट है, एक बच्चे को एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जॉब मिल जाती है।
राजधानी पटना में कोविड के नए मामलों के मिलने का सिलसिला जारी है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9 मरीजों में कोविड संक्रमण की पुष्टि हुई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अविनाश कुमार सिंह ने बताया कि जिले में अब तक 45 लोग संक्रमित हुए हैं, इनमें से 17 पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान में IGIMS, PMCH, NMCH और एम्स में कोरोना की जांच शुरू हो गई है। इस बीच स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि कोविड जांच के लिए राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में जल्द ही 1,00,000 जांच किट उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश में बारिश की गतिविधियों में कमी आने से एक बार फिर अधिकतम और न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान 38.5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ बक्सर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। अधिकांश स्थानों का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया है कि अगले 3 दिनों के दौरान औसत तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। मधुबनी जिले के नरहैया नपटोल के पास पटना से सिलीगुड़ी जा रही एक बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। इस हादसे में एक यात्री की मौत हो गई जबकि 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। खगड़िया समाहरणालय के पास से पुलिस, एसटीएफ और DIU की टीम ने कुख्यात अपराधी विपुल यादव को हथियारों के साथ गिरफ्तार कर लिया। उस पर विभिन्न थानों में 12 मामले दर्ज हैं। और अवंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सरकार के 11 वर्ष पूरे होने पर किसान कल्याण के लिए सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में पिछले 11 साल में लगभग 27 करोड़ लोग अत्यधिक गरीबी से बाहर निकले। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच अगस्त महीने तक सीटों का हो जाएगा बंटवारा। और कुर्बानी का त्योहार ईद उल अजहा यानी बकरीद आज धार्मिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।